ओम शांति। यहाँ पिछले दोनों दिनों से बार बार ओम शांति शब्द सुन रहे हैं। जितना आपने पूरी जीवन में नहीं सुना होगा उतना 3 दिन में आप ओम शांति सुनते रहेंगे। लेकिन ओम शांति केवल बोलना नहीं है। कल आपने आत्मा का परिचय प्राप्त किया, मैं कौन हूँ और मैं क्या हूँ, आत्मा कैसी है। तो आत्मा शांत स्वरूप है, ये उसका मूल धर्म है, मूल स्वभाव है। ये तो पहचाना ना, कल सब थे, जितने भी यहाँ बैठे कल सवेरे के सेशन में थे। जो नहीं थे जरा हाथ खड़ा कीजिए, कल सुबह के सेशन में नहीं थे। ओके, और बहुत से हैं जो आज भी नहीं है, अभी तक आ जाएंगे। प्रकृति को चैलेंज करके हम लोग यहां तक पहुंच गए हैं, तो अब हमें यहां का वो सब कुछ प्राप्त करना है जो जीवन में शायद दूसरी बार इस तरह से हमें प्राप्त हो या ना हो। राजयोग जो ब्रह्मा कुमारी का एक विशेष सब्जेक्ट है, राजयोग ही है जो हमें आंतरिक शक्तियों को विकसित करने का अवसर देता है, हमें खुद से मिलाता है और हमें खुद को चार्ज करने का अवसर देता है। हम बहुत बार जीवन में लॉ फील करते हैं, तब हमें जरूरत होती है कि हमें कोई शक्ति मिले, हमें कोई ऊर्जा मिले, प्रेरणा मिले, कोई हमें उमंग उत्साह भर दे, हमारा मूड ठीक कर दे, ऐसी जरूरत पड़ती है। जैसे बैटरी रिचार्जेबल मार्केट में आती है तो वो अपना काम करती है, लेकिन फिर से उसको चार्ज करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी के साथ कनेक्ट करना ही पड़ता है। उसकी एक लिमिट होती है, 1500 mAh की है, 3000 की है, 5000 की है, तो जितने घंटे वो चल पाएगी वो तो अच्छी बात है, लेकिन उसके बाद उसे पुनः चार्ज करना पड़ता है। तो वैसे ही मैं आत्मा हूँ, ये हम सब ने कल समझा। ये शरीर हमारा माध्यम है जिसके द्वारा हम बोलते हैं, सुनते हैं, चलते हैं, सारे कार्यकलाप करते हैं। और फिर हमारी सूक्ष्म शक्तियां भी है, एक हमारा मन है जो संकल्प उत्पन्न करता है, थिंकिंग प्रोसेस। फिर हमारी बुद्धि है जो हमें राइट और रॉन्ग की समझ देती है, हमारा डिसीजन मेकिंग पावर है बुद्धि हमारी। और इसी प्रकार जो जो कर्म आत्मा जीवन भर करती है वो सारे ही कर्म उसके अंदर रिकॉर्डिंग के रूप में रहते हैं, हमेशा रहते हैं, और वही कहीं ना कहीं हमारे अगले कर्म के लिए लीड करते हैं, हमें प्रेरित भी करते हैं। कभी कभी आप कहते हैं कि मुझे करना नहीं था लेकिन फिर भी मैंने गुस्सा कर लिया, मुझे बोलना नहीं था आज लेकिन फिर भी मेरे मुंह से निकल गया। तो ये जो ऑटोमेटिक प्रेरित होती है आत्मा, वो रिकॉर्डेड कर्म के कारण होती है। तो आत्मा को चार्ज करने के लिए राजयोग ये सबसे उत्तम विद्या है। जैसे बैटरी के अंदर न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, आप सब जानते हैं परमाणु का जो विभाजन हुआ, उसके अंतर्गत भी सारी चीजों को सर्च किया गया। तो कोई भी बैटरी डिस्चार्ज कब होती है, जब उसके इंटरनल कंपोनेंट्स अपनी दिशा, अपने पाथ को छोड़कर दूसरे पाथ पर आ जाते हैं। जो उसका डेस्टिनेशन है, जिस वे में उसको चलना चाहिए, उसके बजाय वो थोड़ा सा राह भटक जाते हैं, तब वो बैटरी डिस्चार्ज होती है। और चार्ज करने का मतलब क्या है कि फिर से वो इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन अपने अपने पाथ को पकड़ लेते हैं, तो वो बैटरी क्या हो जाती है, चार्ज हो जाती है। थोड़ा कनेक्ट होने की कोशिश करना, पूछेंगे तो आप जवाब देंगे। आप सभी यहां ही है ना, ओके, हम सब यूथ है ना, सुन रहे हैं ना, आर यू हियरिंग और लिसनिंग, बोथ लिसनिंग। कल दीदी बहुत अच्छा सुना रहे थे कि हमें लिसनिंग पावर बढ़ानी है, तो प्रेजेंट रह के सुनना है। तो हमारी इंटरनल बैटरी को चार्ज करना है, आत्मा को चार्ज करना है। तो आत्मा के भी ये तीनों कंपोनेंट्स हैं जो कल आपने सुने हैं, मन, बुद्धि और संस्कार। इन तीनों को रेगुलेट करना, इन तीनों को नियंत्रित करना, इन तीनों को व्यवस्थित करना, ऑर्गेनाइज करना, उसी का नाम है खुद को चार्ज करना। मन ऐसा हो कि हम जब चाहें जो चाहें सोच सके, बुद्धि ऐसी हो कि राइट टाइम पर राइट डिसीजन दें, संस्कार ऐसे हो कि जैसा कर्म वैसी आदत वैसे संस्कार वो बन जाएं। हम ये न कहें ये कर्म तो मैंने कभी किया ही नहीं है, इस काम को करने की तो मुझे आदत ही नहीं है, ये तो मेरे लिए नया है, मैं नहीं कर सकता, ये अंदर से न निकले। लेकिन संस्कारों को हम ढाल सके हर कर्म में। तो इस तरह से मुझे अपनी इंटरनल बैटरी को चार्ज करना है, सभी को करना है। जरा हाथ खड़ा कीजिए, कौन चाहता है कि मैं कहूं और मन न माने, वो तो अच्छा नहीं लगेगा ना। तो मैं कहूं मन माने, ठीक है, तो चार्ज करना है। अब एक्सटर्नल पावर कहां से आएगी? एक तो आत्मा खुद पॉजिटिव थिंकिंग करे, खुद के साथ बात करे, शांत रहे, काफी हद तक उसकी भी मदद मिलती है, लेकिन सब कुछ उससे नहीं होता है। हम पॉजिटिव भी रहेंगे, हम शांत भी होने की कोशिश करेंगे, लेकिन चारों तरफ का वातावरण अनेक प्रकार का है जिसमें नकारात्मक ऊर्जा भी फैली हुई है। हमारे ऊपर जो जिम्मेवारियां हैं वो भी हमारी कैपेसिटी से कहीं ज्यादा भारी भी होती है, चैलेंजेस हमारे सामने बहुत होती है। तो तब क्या होता है, हम खुद केवल हम अच्छा सोचें इससे परिवर्तन नहीं आता है, तब हमें जरूरत पड़ती है एक्सटर्नल पावर की। तो जैसे इलेक्ट्रिसिटी से आप बैटरी को कनेक्ट करते हो एक लीड के माध्यम से, एक तार के माध्यम से, वैसे ही योग का मतलब है अपने मन यानी अपने विचारों को बुद्धि की एकाग्रता के द्वारा एक ऐसी जगह पर जोड़ना जहां से एनर्जी शक्ति मिले और आत्मा के जो मूल गुण है, शांति भी एक गुण है, प्रेम भी एक गुण है, आनंद है, सुख है, पवित्रता है, शक्ति है, ये सारे गुण बढ़ने लगे। तो वो किससे जोड़ना, योग शब्द का ही अर्थ होता है कम्यून, कनेक्शन, कम्युनिकेशन, जोड़। योग माना ही जोड़। जो पुराने समय में हम हाथ से लिखते थे, चार पांच संख्याओं को जब जोड़ते थे तो नीचे क्या लिखते थे, कुल योग, कुल योग इतना हुआ है ना। तो योग माना जोड़। तो अब जुड़ते तो हम कहीं ना कहीं है ही, कहीं ना कहीं हमारा जोड़ है ही, लेकिन आज हमें परमात्मा जो परम सत्ता है, जो अविनाशी है, जो सदा ही फुल चार्ज रहते हैं जैसे सूर्य है, तो इस धरती के लिए वो एनर्जी का सोर्स है। सोलार एनर्जी के बिना इस पृथ्वी पर जीवन संभव ही नहीं है। न वनस्पति उगती है, न जीवन में हम सभी प्राण ऊर्जा को प्राप्त कर सकते हैं, न हमारा पोषण हो सकता है। तो जैसे संसार के लिए एनर्जी का सोर्स है सूर्य, वैसे संपूर्ण ब्रह्मांड को, संपूर्ण प्रकृति को भी ऊर्जा या शक्ति देने का जो सोर्स है वो है परमात्मा। तो इसलिए जगह जगह ये कहा जाता है, जब भी कोई लॉ फील करता है, जब भी किसी की शक्ति कम हो गई, उल्लास कम हो गया, कोई उदास है, तो उसको क्या कहते हैं, ईश्वर का ध्यान कीजिए, ईश्वर में मन लगाइए, तो शायद आपका मन फिर से शक्ति पाएगा, आपको शांति मिलेगी, है ना। लेकिन बहुत बड़ा प्रश्न आज के समय में ये है कि ईश्वर का भी ध्यान लगाएं तो भी एकाग्रता प्राप्त नहीं होती। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा प्रश्न है, ईश्वर है कौन? आज वहां पर भी व्यक्ति मूंझ जाता है कि मैं किस वाले ईश्वर को याद करूं। तो आज हम सभी भी सोचेंगे कि ईश्वर कौन है, उनका पूर्ण परिचय आज हमें प्राप्त करना है। क्योंकि ध्यान, मेडिटेशन, उसमें ध्येय का बड़ा महत्व है कि आपको किसका ध्यान धरना है। वो जो आपका ध्येय है वो जब तक निश्चित नहीं होगा तो आप एकाग्र हो ही नहीं सकते, क्योंकि वहां ही आपके मन में मूंझ हो रही है कि मेरा दोस्त है वो तो इस भगवान को याद करता है, मेरी मम्मी उस भगवान को याद करती है, मेरे पड़ोसी इस मंदिर में जाते हैं, मेरा एक दोस्त मस्जिद में जाता है, और मुझे कौन से वाले भगवान को याद करना चाहिए। आज बहुत बड़ा प्रश्न है ये। वहां ही दुनिया के अंदर कितने सारे युद्ध भी हो गए हैं। वैसे तो कहते हैं मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, परंतु एक करुण वास्तविकता ये है कि दुनिया के बहुत सारे युद्ध जिसमें अनेकों की जाने गई, उसकी जड़ में धार्मिक भावनाएं टकराई थी। धर्म कभी भी टकराने का नाम नहीं लेता, बावजूद उसके इतिहास गवाह है कि धर्म के कारण, क्योंकि धर्म आस्था से जुड़ा है, इमोशन से जुड़ा है, बिलीव से जुड़ा है, तो वो टकरा जाती है। तो ब्रह्मा कुमारी इसका एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर पूरे विश्व के अंदर के सभी देश और सभी धर्म के लोग जुड़े हुए हैं, तो एक ऐसी कॉमन थिंकिंग, एक ऐसा कॉमन फैक्ट, उससे हम आपको जोड़ने की कोशिश करेंगे, जिससे कि हम सभी को यह प्रश्न समाप्त हो जाए कि किस भगवान को याद करें। तो आपके सामने सनातन धर्म के बहुत सारे ऐसे प्रतीक हैं जिनको हम आस्था से याद करते आए हैं। विष्णु जी है, शंकर जी है, हर एक के घर में कोई ना कोई कुल देवी का चित्र होता है, मूर्ति होती है, गणपति जी को हम याद करते हैं, हनुमान जी को याद करते हैं। अब इनके बारे में एक चीज मैं आपको बताती हूं, हनुमान जी ने जीवन भर अपने लिए शक्ति प्राप्त की तो किसी न किसी का ध्यान लगाया, वो एक आदर्श भक्त भी थे, तो उन्होंने किसका ध्यान लगाया ये प्रश्न है। गणपति जी ने स्वयं माता पिता के रूप में शिव और पार्वती, उनको आराध्य माना। जब कहा गया कि सारे विश्व के देवी देवताओं का चक्र लगा कर आओ, तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया, अपने माता पिता का ही चक्र लगाया और उनकी यात्रा सफल भी हो गई। इसलिए उनको बुद्धिवान कहते हैं, बुद्धि के देवता कहते हैं। हर देवी के साथ भी कोई ना कोई गुण जुड़ा है, लेकिन आपको पता होगा जब हम देवी जी की आरती करते हैं तो उनमें एक नाम आता है शिव शक्ति की आरती। हर शक्ति को, देवी को, शिव की शक्ति कहा गया कि जब जब धरा पर कोई ना कोई आसुरी शक्ति प्रकट हुई तो शिव के द्वारा एक दैवी शक्ति को उत्पन्न किया गया और वो उस वक्त की आसुरी शक्तियों का नाश करने धरती पर आई, यानी शिव से कनेक्टेड है वो। विष्णु जी को अनेक अवतार दिखाए गए हैं। तो आप सभी ये जान लें कि ईश्वर माना कौन? अद्वितीय, जिनके जैसा कोई और नहीं, और सर्वोच्च, जिसके लिए कहते हैं ऊंचे से ऊंचा। लेकिन इन सब को हम क्या कह सकते हैं? देवी देवताएं, जिन्होंने साकार में जन्म लिया, साकार में शरीर धारण किया, परंतु कहीं ना कहीं उनसे भी सर्वोच्च, उनसे भी ऊपर कोई ऐसी शक्ति थी जिससे उन्होंने भी ऊर्जा को पाया। अब दूसरी बात, कई लोग कहते हैं कि चलो हम सनातन धर्म में बिलीव नहीं करते हैं, हम अलग अलग पंथ के हैं, बहुत अच्छी बात है। इब्राहिम आए, उन्होंने धर्म स्थापन किया इस्लाम, और उन्होंने भी राह बताई, देही में शिवा। फर्स्ट सेंटेंस जो इब्राहिम जी के द्वारा उच्चारित हुआ, और अनेक पैगंबर आए और उन पैगंबरों ने भी कहीं ना कहीं ऐसे उंगली दिखाई। मोहम्मद साहेब ने कहा अल्लाहू अकबर, और उन्होंने स्पष्ट कहा कि मैं पैगंबर हूं। और पैगंबर कौन होता है? पैगंबर मींस संदेश वाहक, बट संदेश किसका? संदेश किसका? वो संदेश वाहक के रूप में आए और उन्होंने मानवता को बहुत सुंदर संदेश दिया। तो इब्राहिम भी एक सर्वोच्च संदेश वाहक बनकर आए, लेकिन उन्होंने परिचय किसका दिया? तो खुदा के बारे में, ईश्वर के बारे में व्याख्या क्या की कि वो इतना सूक्ष्म है, अकबर, जो कभी भी न जन्म लेता है न कब्र में जाता है, ऐसी सर्वोच्च सत्ता है और वो एक ज्योति है। मोहम्मद साहेब को भी एक ज्योति का दर्शन हुआ हीरा नाम की गुफा में आज से 1400 साल पहले, और तब वो पैगंबर बनके उन्होंने कुरान की आयतें सबको दी। लेकिन कहीं ना कहीं परिचय कुरान में भी किसका है? उस निराकार का। गौर से जिन्होंने पढ़ा है उनको अंदाज होगा, महात्मा बुद्ध आए, उन्होंने भी उस वक्त के अंदर जो संसार में परिस्थितियां थी कि मनुष्य जड़ता से धार्मिक क्रियाकलाप कर रहे थे, लेकिन उनके पीछे का लॉजिक समझ नहीं पा रहे थे, धर्म के नाम पर बलि भी दी जा रही थी, यज्ञ हो रहे थे, क्रियाकांड हो रहे थे, लेकिन किसी को भी शांति फिर भी नहीं मिल रही थी। उन्होंने एक सूत्र दिया कि चित्र की नहीं चरित्र की पूजा करो, और उन्होंने मूर्ति के पूजा के बजाय लव इज गॉड, पीस इज गॉड, यानी हर गुण को पूजने की, अपनाने की बात कही। लेकिन ये करुण वास्तविकता है कि महात्मा बुद्ध के जाने के बाद महात्मा बुद्ध की ही मूर्तियां भी बनी और उनकी भी पूजा ही हुई। जितना उनके संदेशों को साकार कर पाए लोग, उससे अधिक केवल उनकी पूजा ही होती रही। और वो जीवन भर ये कहते रहे कि व्यक्ति बड़ा नहीं है, उसके विचार और उसके गुण बड़े हैं, इसलिए आप गुणों की पूजा करें। दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति भी महात्मा बुद्ध की थी, तो वे भी बौद्ध धर्म के रूप में संसार के परिवर्तन हेतु एक मैसेज लेकर आए, और उन्होंने परमात्मा को क्या कहा? पीस इज गॉड, लव इज गॉड, यानी ये जो सारे गुण है उनका स्रोत है वो परमात्मा है। आप उस रूप में मत जाओ कि वो कैसा दिखता है, वो एनर्जी का सोर्स है। इसी तरह महावीर आए, महावीर से पहले भी जैन धर्म में अनेक तीर्थंकर आए, तो उन तीर्थंकरों ने भी कठिन साधनाएं की और कठिन साधना के द्वारा उन्होंने अपने आप को तपाया, अपने को शरीर के भान से मुक्त किया, कठिन व्रत किए और उन व्रतों के द्वारा उन्होंने देह भान को भुलाया और उन्होंने एक लक्ष्य रखा कि हमें सभी कर्म बंधनों से मुक्त होना है, जिसे नाम दिया मोक्ष। और मोक्ष के लिए उन्होंने क्या कहा कि एक सबसे ऊंचा स्थान है जिसको आप यहां पर जानेंगे, जिसको परम धाम, निर्वाण धाम कहते हैं। और महावीर स्वामी जी ने उनको सिद्ध शिला कहा कि उस सिद्ध शिला में मुक्त होके सभी को जाना है। और उसी के लिए उन्होंने स्वयं भी बहुत सारे कष्ट सहते हुए भी बहुत अच्छी साधना की और साधना का पथ चलाया। तो वो स्वयं भी एक साधक थे और बाद में उन्होंने अपनी उस ऊंच अवस्था को प्राप्त किया। ईसा मसीह भी कौन थे? उन्होंने भी क्या कहा, आई एम द मैसेंजर ऑफ गॉड। जब उनको कहा गया हु इज गॉड, तो क्या कहा, गॉड इज लाइट। हर जगह उन्होंने परमात्मा को एक ज्योति के रूप में कहा, आई एम द सन ऑफ गॉड, आई एम द मैसेंजर ऑफ गॉड, गॉड इज लाइट। और उन्होंने परमात्मा जो मर्सीफुल है, तो हम सभी को भी मर्सीफुल बनने की नॉलेज दी कि दया रखिए तो ये मानवता टिकेगी। अगर हम एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे, हम एक दूसरे के अवगुणों को देखेंगे, हम एक दूसरे से नफरत करेंगे, तो ये मानवता ही नहीं टिकेगी। इसलिए सबसे प्रमुख उनका संदेश था, दया को धारण कीजिए। इसी तरह गुरु नानक देव आए। गुरु परंपरा में कई गुरु हुए, सिख संप्रदाय में गुरु नानक देव ने भी एक नाम की माला ली, एक ओमकार निराकार। गुरुवाणी में भी कई लोग सुनते होंगे सतनाम, कर्ता पुरुष, जो अनादि अविनाशी, जो था भी, जो है भी, जो रहेगा भी, वो एक है। उनका उन्होंने ज्ञान दिया कि वो निरंजन है, वो निराकार है। जब सिख समुदाय के लोग आपस में मिलते हैं तब भी क्या कहते हैं, सत श्री अकाल, है ना। अकाल मीन्स जिसे काल नहीं छू सकता। अब देखिए, जो भी धरती पर जन्म लेता है, जन्म शरीर धारण करता है, उसे तो एक दिन मृत्यु को प्राप्त होना ही पड़ता है, होना ही पड़ता है। जो भी आज तक धरा पर आए, सबकी एक दिन मृत्यु तो होती ही है। लेकिन परमात्मा किसको कहा गया, सत श्री अकाल, जिनको काल छू नहीं सकता। अगर वो जन्म लेते हैं तो मृत्यु जरूर होती है, लेकिन जिसका न जन्म है, जिसकी न मृत्यु है, वो है सत, यानी ईश्वर। तो गुरु नानक देव का संदेश भी ईश्वर सत्य की तरफ जाता है। तो ये सभी कौन हुए, ईश्वर कौन हुए, ईश्वर के संदेश को लेकर और संसार में एक अच्छी विचारधारा को स्थापित करने वाले, जिनको हम समुदाय या संप्रदाय या धर्म के संस्थापक कहेंगे, प्रिसेप्टर कहेंगे। अब कई सारे धर्म प्रचारक महात्माएं भी आए संसार में। बहुत से लोग उन्हीं को ही भगवान मानते हैं। आदि शंकराचार्य आए, बाल उम्र में उन्होंने कठिन तपस्या की सनातन धर्म को पुनर्स्थापित करने के लिए, पूरे भारतवर्ष की यात्राएं की। उन्होंने देखा कि संसार में रहकर व्यक्ति काम क्रोध वासनाओं से लिप्त होता जा रहा है, इसलिए उन्होंने सन्यास मार्ग शुरू किया। सन्यास मार्ग पर संपूर्ण ब्रह्मचर्य, त्याग, तपस्या और एक पूरा ऐसा समुदाय कि जो कम से कम संपूर्ण रूप से धर्म के लिए समर्पित हो, उनको उन्होंने तैयार किया। इसी तरह स्वामीनारायण संप्रदाय आप जगह जगह देखते होंगे। तो जो बाल घनश्याम के रूप में जिनका जन्म हुआ, उन्होंने भी स्वयं पहले कठिन तपस्या की और उसके बाद सात्विक जीवन जीने का संदेश दिया कि आपको खानपान शुद्ध खाना है, आपको मर्यादा में रहना है और एक बहुत ही सुंदर समुदाय को उन्होंने तैयार किया जो अपने संगठन से, अपने जीवन के सात्विकता से आज भी चल रहे हैं। एक बहुत बड़ा संप्रदाय है जो गुजरात और गुजरात से बाहर भी बहुत सारी जगह पर आप शायद उनको पाएंगे, स्वामीनारायण संप्रदाय। लेकिन वो स्वयं स्वामीनारायण जिनको हम कहते हैं, वो घनश्याम के रूप में जन्म लेने वाले हमारे जैसे ही थे, लेकिन कठिन तपस्या की उन्होंने, हिमालय की गोद में ठंड में भी तपस्या की उन्होंने। इसी तरह सेंट जेवियर जो ईसाई धर्म के एक बहुत माने हुए संत है, इसी तरह ख्वाजा निजामुद्दीन ख्वाजा के कई जगह पर आप देखते हैं कि मुस्लिम धर्म के अंदर अलग अलग ऐसे संत हुए, फकीर हुए, और उन्होंने भी क्या किया, अपने धर्म में जब जब भी कोई सुधार की आवश्यकता हुई, कोई सपोर्ट की आवश्यकता हुई, तो उन्होंने आकर अपने धर्म के लोगों को जगाया कि आप साधारण मत बन जाइए, बहुत ऊंचा लक्ष्य आपके धर्म का। साई बाबा, उन्होंने अपने हिसाब से, अपने श्रेष्ठ भावनाओं से लोगों को सपोर्ट किया, किसी का इलाज किया, किसी को आत्मिक ऊर्जा का दान दिया, वो स्वयं साधना कर और दूसरों को उस साधना का फल देते थे। लेकिन वो भी कौन थे, ये सभी महान आत्माएं थी जिन्होंने स्वयं धरती पर महान कर्म किए। तो देखिए, हमने क्या देखा, धर्मात्माओं को देखा, महात्माओं को देखा, धर्म संस्थापकों को देखा, देवी देवताओं को देखा, लेकिन परमात्मा कौन है, ये प्रश्न अभी भी बाकी है। तब कुछ लोग कहते हैं कि प्रकृति ही परमात्मा है, नेचर इज गॉड। अब नेचर क्या है, मनुष्य या प्राणी मात्र को, जंतु जीव सभी के लिए जीवन जीने के लिए पांच तत्व आवश्यक है और इन फाइव एलिमेंट्स को ही हम प्रकृति कहते हैं। तो प्रकृति का एक सबसे बड़ा गुण है कि प्रकृति लेती नहीं, देती है, इसलिए प्रकृति को मां कहते हैं। जैसे कहते हैं ना, मां हमेशा देती है, तो वृक्ष के लिए कहते हैं ना, वृक्ष न खाते कभी अपना फल, नदी न पीती कभी अपना जल, पर हित, पर उपकार के लिए वो जीवन व्यतीत करते थे। तो वृक्ष जो हम सबके लिए प्राणवायु देते हैं, तो वो देने वाले हो गए। सूर्य जो हमारे जीवन जीने की ऊर्जा प्रदान करते हैं, नदियां स्वच्छ जल प्रवाहित करके कहां से कहां तक पहुंचाती है, अग्नि जो हम सबकी उदर के लिए जो हमें भोजन पकाना है उसके लिए सबसे बड़ा सपोर्ट है, और जो संसार के जितने भी जलचर स्थलचर वायुचर जितने भी पशु पंछी प्राणी है, इन सब का भी अस्तित्व क्या है, ये भी देने वाले हैं। आप देखिए, पंछी जो खाता है वो भी वापस प्रकृति के अंदर देकर के और वो अपना जीवन सफल करता है। तो इसलिए आज कई पंछियों को, पशुओं को देवताओं के वाहन के रूप में भी दिखाया गया है ना। देखिए, पार्वती जी के साथ भी नंदी, शिव के साथ भी नंदी के रूप में बैल दिखाया है ना। इसी तरह से किसी का वाहन शेर है, तो कहीं कमल पुष्प पर देवी विराजमान है, तो कहीं ना कहीं ये सभी प्रकृति के साथ जुड़े हुए ऐसे क्रीचर्स हैं जो देने का काम करते आए, तो उनकी भी पूजा हो गई। तो प्रकृति की भी पूजा मनुष्य क्यों कर रहा है, कि उनसे हमें कुछ ना कुछ मिल रहा है। लेकिन क्या प्रकृति को ईश्वर कहेंगे? कभी कभी प्रकृति, जैसे पिछले 3 दिनों से चक्रवात आया हुआ है, और प्रकृति से क्या हो रहा है, बहुत से मानव आत्माएं, बहुत सी व्यवस्थाएं डगमग हो गई है। कई जगह पर बाढ़ है, कई लोगों के आशियाने चले गए, बहुत जगह लोगों को शेल्टर हाउस में डाला हुआ है. हम सब तो ज्ञान सरोवर में बैठे हैं, हम तो महसूस ही नहीं कर पा रहे कि बाहर क्या हो रहा है. और इंटरनेट बंद है इसलिए समाचार भी नहीं मिल रहा है, बहुत अच्छी बात है. लेकिन वास्तव में इस चक्रवात से बहुत से राज्य और बहुत से लाखों लोग परेशान हैं. तो तब क्या कहेंगे, क्या ईश्वर किसी की जीवन को, व्यवस्था को डिस्टर्ब कर सकते हैं? प्रकृति जो देती आई, परंतु प्रकृति में हमने क्या किया, मानवों ने सबसे ज्यादा किया पॉल्यूशन, अनेक प्रकार की गंदगी फैला दी. और अब उस पॉल्यूशन के कारण प्रकृति के अंदर जो उसके गुण है वो नष्ट होते गए. तो अब वो प्रकृति प्यूरिफिकेशन के मोड पे है. जैसे आपको मोबाइल को कभी कभी बूस्ट करना पड़ता है ना, पूरी तरह से सारी मेमोरी को कभी कभी आप डिलीट कर देते हैं और फिर से रीस्टार्ट कर देते हैं. वैसे प्रकृति जब जब भी आफत लाती है, ये क्या है, ये प्रकृति अपना प्योरिफिकेशन मोड पे होती है. तो ये प्रकृति का कार्य अलग है, लेकिन उसे भी हम परमात्मा नहीं कहेंगे. तो अब परमात्मा कौन है? ब्रह्मा कुमारी इसके द्वारा आपको जगह जगह शिव बाबा ज्योति बिंदु का सामने चिन्ह लाइट दिखाई देती है. एक निराकार ज्योति स्वरूप. शास्त्र अनेक की बात भी करते हैं, तो शास्त्रों के आधार पे हम अनेक 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 मान्यताओं में चले जाते हैं. लेकिन फिर भी एक कहावत है, जिन खोजा तीन पाइया गहरे पानी पेट. अगर शास्त्रों का भी कोई डीप गहराई से अध्ययन करे तो समग्र शास्त्र भी कहीं ना कहीं अंत में एक की ओर ही इशारा करते हैं. लेकिन चूंकि आज का समय क्या है, हम कुछ चीजें पढ़ लेते हैं, कोई दिन होता है जब एक दो अध्याय पढ़ लिया, थोड़ा सा हमने शास्त्र का आधार ले लिया, लेकिन हम अध्ययन करेंगे तो सर्व शास्त्रों का सार भी यह निकलता है जो गीता के अंदर, वेदों के अंदर भी कहा गया कि ईश्वर एक है. परंतु ईश्वर धरती पर कुछ विशिष्ट आत्माओं को समय प्रति समय भेजकर उस युग को संभालने के लिए उनको निमित्त बनाते हैं, और वे सभी अलग अलग युग पुरुष बनते हैं. चाहे वो सतयुग में श्री कृष्ण के रूप में, त्रेता में श्री राम के रूप में, या द्वापर से अलग अलग धर्म स्थापकों के रूप में, परंतु वे परमात्मा के द्वारा भेजे गए हैं. ये सर्व शास्त्रों में कहा गया. अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि क्या परमात्मा कण कण में है, हम सब में ईश्वर है, ये बहुत समय से आप सुनते आए होंगे. तो जो हमारे शास्त्रकार थे, जो हमारे पुराने चिंतक ऋषि मनीषी थे, उनको ये जरूर दृश्य दिखाई दे रहा था कि समय बीतता जा रहा है, तो एक समय ऐसा आएगा जब व्यक्ति व्यक्ति से इतना नफरत करेगा, व्यक्ति व्यक्ति से इतना घृणा करेगा कि वो शायद उसको जिंदा भी न रहने दे, और प्राणी मात्र के प्रति तो बिल्कुल भी दया नहीं रहेगी. इसलिए उन्होंने एक चिंतन दिया कि सब में ईश्वर को देखो. जैसे बच्चे को कोई पाठ सिखाना होता है तो किसी न किसी माध्यम से हम सिखाते हैं कि बेटा ब्रश नहीं करोगे तो कीड़े होंगे, कीड़े होंगे वो आपके दांत को खा जाएंगे, फिर आपको ये हो जाएगा, फिर वो हो जाएगा. रात को नींद नहीं करता है बच्चा तो हम कहते देखो बाहर भूत खड़ा है, ये है, कुछ ना कुछ बचपन में आपने सुना होगा. तो ये रूपक थे कि सबके अंदर ईश्वर है, आप किसी से भी घृणा न करें. लेकिन मनुष्य ने क्या किया है, आज ऐसे भी मनुष्य हैं जो पशु और प्राणियों को तो पका के खाते हैं, जिंदा भी खाते हैं, और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो मानव भ्रूण को भी खाते हैं. और ये आजकल की बात नहीं है, ये आज से 15 साल पहले एक न्यूज आई थी कि कोरिया के पास, मैं नाम भूल रही हूँ, एक कंट्री है जहाँ पर कुछ माताएं केवल इसके लिए गर्भ धारण करती है कि 7 और 8 महीने के उस गर्भ को रेस्टोरेंट में पकाया जाता है। और ताइवान, यस मैं भूल रही थी, ताइवान ऐसा कंट्री है जहां इतने सारे रेस्टोरेंट हैं जिसमें फूड मिलता है, रोस्टेड बेबी फूड। और वो रोस्टेड बेबी क्या होता है, मां के गर्भ में पल रहे भ्रूण को एबोर्शन कर स्पेशली पकाने के लिए वहां पर लाया जाता है। सोचिए वो मां कैसी और वो रेस्टोरेंट कैसा और वो खाने वाले कैसे। तो हमारे मनीषियों को पता था कि एक समय ऐसा आएगा जब इंसान इंसान को खाएगा, इसलिए उन्होंने ये मान्यता दी थी, सब में ईश्वर को देखो। परंतु ये मान्यता तो रह गई, आज फिर भी इंसान इंसान से कितना दूर होता चला गया है। क्या किसी व्यापारी को ग्राहक में भगवान दिखता है? क्या किसी सास को अपनी बहू में भगवान दिखता है? वो मंदिर में जाके तो जरूर कहती है प्रभु तू कण कण में है, जिधर देखू तू ही तू, लेकिन जैसे मेरा कॉम्पिटिटर सामने आता है तो क्या मुझे उसमें भगवान दिखता है, मैं एक्सक्यूज कर पाती हूं? तो ये हमने सिर्फ बोला है कि या नहीं है। तो वास्तव में परमात्मा सर्वव्यापी नहीं, एक मान्यता है। हर आत्मा को कई लोग भटकती हुई आत्माओं की भी पूजा करते हैं, उनको भी भगवान मान लेते हैं और उनकी भी अनेक प्रकार की तंत्र साधनाएं आदि होती है। इसी तरह कोई कोई कहते हैं कर्म ही पूजा है, वर्क इज वर्शिप, मुझे और कोई भगवान के चक्कर में नहीं पड़ना, मुझे अपना काम ईमानदारी से करना है, बस वही मेरे लिए भगवान है। लेकिन सिर्फ कर्म को ईश्वर मानने से आप अपने अंदर शक्ति तो प्राप्त नहीं कर सकते हैं। शक्ति प्राप्त करने के लिए आपको एक्सटर्नल एनर्जी की जरूरत है। अब जो ये अलग अलग मान्यताएं हैं उसको आप इस चित्र से समझेंगे कि एक हाथी और 5 अंधे, जब उसको देखना है कि हाथी क्या है कैसा है तो वो क्या करेंगे, जरूर उसको टच करके देखेंगे, आंखें उनकी बंद है। तो जैसा जिसने टच किया वैसा उसको पता चला। किसी ने उसकी सूंड पकड़ी तो क्या महसूस हुआ, हाथी कैसा है, सांप जैसा है। किसी ने उसके कान पर हाथ रखा तो क्या महसूस किया, सूप जैसा है या पंखे जैसा है। किसी ने उसकी पीठ पे हाथ फेरा, उसे क्या महसूस हुआ, हाथी दीवार जैसा है। किसी ने पूंछ को पकड़ा, उसे क्या महसूस हुआ, हाथी तो रस्सी जैसा है। और किसी ने अगर उसके हाथी के पैर को पकड़ा तो उसे क्या महसूस हुआ होगा, खंबे जैसा है। तो इन 5ों के बीच में बहस होना अगर शुरू हो जाए तो कोई भी साबित कर पाएगा, तो उसको किसकी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि वो 5ों अंधे हैं और 5ों ने एक एक पार्ट को छुआ है। अगर सचमुच पूरे हाथी को महसूस करना है तो क्या जरूरत है, हाथी को, पूरे हाथी को देखना। बस मैं वही कहना चाहती हूं कि हर धर्म हर संप्रदाय किसी एक विशेष सिद्धांत को, किसी एक पूजा पद्धति को लेकर और वर्णन कर रहे हैं, सिखा रहे हैं, अच्छी बात है, परंतु क्या समग्र रूप से परमात्मा से मिलाने का दावा, परमात्मा को देखा है आपको भी दिखा रहे हैं, ऐसा दावा कोई भी नहीं कर पा रहा है। माना समग्र हाथी को किसी ने भी देखा नहीं है। तो आज हम सबको ये जानना है कि परमात्मा फिर कौन हो सकते हैं। कोई बात नहीं, आपके सामने चित्र नहीं आ रहा है। 5 बातें आप अपने अंदर जरूर नोट कीजिए, परमात्मा हम किसे कहें। देखिए, परम शक्ति को नहीं पहचानेंगे तो हमारे में आत्मिक शक्ति बढ़ाने की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। सर्वज्ञ, सबसे पहली परमात्मा की अगर डेफिनेशन है तो वो सर्वज्ञ है, जो सब कुछ जानता है, जिसके लिए कोई भी बात ऐसी नहीं कि वो उन्हें नहीं पता। तभी हम कहते हैं ना, वो सब कुछ जानता है। दूसरी चीज, सर्वशक्तिमान, उसके लिए कोई ऐसी चीज नहीं जो वो न कर पाए। सर्वशक्तिमान है, वो सब कुछ कर सकते हैं। सर्वोच्च, जिनसे ऊपर और कोई नहीं। परमात्मा ऐसा नहीं हो सकता है कि वो भी किसी और का ध्यान धरें और उनसे शक्ति लें, फिर तो परमात्मा वो हो गए ना, सबसे ऊंचा तो वो हो गया ना। तो जिनका उन्होंने ध्यान लगाया, तो परमात्मा अर्थात जिनको किसी का ध्यान लगाने की जरूरत ना हो। सर्वोपरि, जिनका स्थान, जिनका ओहदा सबसे ऊपर का हो, वो परमात्मा है। और जो सर्व धर्मों में मान्य हो, ये सबसे बड़ी बात है कि सभी धर्म जिसको स्वीकार करे वो ईश्वर हो सकता है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं सनातन धर्म का हूं तो मेरा ये भगवान, फिर दूसरे का दूसरा भगवान, तीसरे का तीसरा भगवान, तो देर आर सो मेनी गॉड। नो, गॉड इज वन। तो वो एक कौन जिसको संसार में विद्यमान सारे धर्म माने, स्वीकार करें, हम उस ओर अब चलेंगे। परमात्मा का स्वरूप देखिए, एक पिता के चार बच्चे हैं। अब चारों बेटे अलग अलग दिशा में, अलग अलग वातावरण में रह रहे हैं। वो अपने पिता को जब बात करते हैं तो एक बोलता है पिताजी, ऐसे संबोधित करता है। दूसरा, क्योंकि अलग जगह पर रहता है, वो कहता है डैडी। तीसरा बोलता है पापा, एक बोलता है डैड। आजकल बोलते हैं ना हाय डैड, हाय मॉम, ठीक है। चारों के शब्द संबोधन डिफरेंट है, लेकिन अगर चारों को पूछा जाए कि अपने पापा का चित्र तो बता दो, तो वो क्या निकलेगा? एक ही निकलेगा, क्योंकि वो एक पिता की चार संतान है। ठीक वैसे ही भले लगता है कि संसार में अनेक धर्म है और अनेक सारी मान्यताएं हैं, लेकिन अगर उन सब से एक चीज को निकाला जाए कि वो किस रूप को सर्वोच्च मानते हैं, तो वो रूप एक ही निकल कर सामने आता है कि वो निराकार है, वो देह से परे है, वो ज्योति है, वो परम सत्ता है, वो ऊंच से ऊंच है। ये बात कॉमन सभी धर्मों की निकल कर आती है। तो परमात्मा का वास्तविक स्वरूप, जिसे मोहम्मद साहेब ने नूर कहा कि मुझे एक नूर दिखाई दिया। ईसा मसीह ने, क्राइस्ट ने, जिनको कहा गॉड इज लाइट। गुरु नानक देव ने जिसको कहा सत श्री अकाल। और सनातन धर्म में जिसको कहा देवों के देव महादेव। क्योंकि देव तो अनेक है, भारत में आपको पता है ना 33 करोड़ देवताओं का गायन पूजन होता है, तो देव तो अनेक है, लेकिन देवों का देव महादेव वो एक है। तो वो सभी मान्यताएं आखिरी जहां मिलती है वो है ज्योति स्वरूप परमात्मा है। और परमात्मा के गुण जानेंगे, वो निराकार है। निराकार का मतलब ये नहीं कि उनका कोई आकार नहीं है, पर न तो वो कोई साकार मनुष्य जैसा है और न वो कोई सूक्ष्म आकारी देवताओं जैसे हैं, तो वो निराले आकार सदा ज्योति रूप में है। ज्योति बिंदु है और अविनाशी है, उनका स्वरूप बदलता नहीं है। उनका वास्तविक नाम है शिव, लेकिन सभी लोग शिव नाम से उनको याद नहीं करते हैं, क्योंकि शिव संस्कृत में एक सुंदर अर्थ है। आपने पुराने लोगों से अगर सुना होगा, जब कोई प्रणाम करता है तो संस्कृत में उनको आशीर्वाद देते समय कहा जाता है शिवम अस्तु, शिवम कल्याण, बिंदु, है ना। जब कोई संख्या बोलते हैं तो जब बिंदु आता है तो शिव भी कुछ लोग बोलते हैं, जहां बिंदु वहां शिव, बीज, शुभकारी, मंगलकारी, ऐसा शिव शब्द का अर्थ है। इसी तरह से परमात्मा का रूप ज्योति स्वरूप है, ज्ञान के वो सागर है, उनके स्वभाव यानी जो उनके मूल उनके अंदर जो भरी हुई है आत्मा के जितने भी गुण है उन सारे गुणों के वो सोर्स है, भंडार है, सागर है। तो इन सभी बातों से उनका वर्णन किया जाता है। परमात्मा के कर्तव्य, उनसे परमात्मा को हम पहचानेंगे। जैसा उनका नाम है शिव कल्याणकारी, वो सदैव कल्याण करते हैं। परमात्मा की अनेकानेक विशेषताएं हैं, वो परम शक्ति है, वो पतित पावन है, पापी आत्माओं को पावन बनाते हैं, वे त्रिलोक के नाथ है, तीनों लोकों की जानकारी ज्ञान हमें देते हैं, वे सर्व गुणों के सागर है, कल्प वृक्ष जो ये संसार है, गीता में कहा गया है सृष्टि एक वृक्ष है, परमात्मा उसके बीज है, यानी उनकी मूल रचना के आधार है, वे मुक्तिदाता है, वे त्रिकालदर्शी है, वे सर्वशक्तिमान है, दिव्य बुद्धि के दाता है, मानव को देव बनाते हैं, भाग्य विधाता है। तभी तो भाग्य की कमी होती है तो लोग कहां जाते हैं, हे प्रभु मेरे किस्मत को खोल दो, मेरी किस्मत अजमाने निकलाऊं। वे स्वर्ग के रचयिता है। कोई कोई कभी कभी कहते हैं ना, भगवान ऐसी क्यों दुनिया बनाई, दुनिया बनाने वाले काहे को दुनिया बनाई है, क्योंकि आज की दुनिया को देख के हम बहुत परेशान होते हैं, लेकिन परमात्मा ने दुनिया जरूर बनाई, पर कौन सी, स्वर्ग की दुनिया, जब सतयुग था। धीरे धीरे ये दुनिया सतयुग से बदलकर कलयुग बन गई। त्रिमूर्ति देवों के भी वो रचयिता है, ब्रह्मा विष्णु और शंकर, उनको भी उन्होंने रचा है, वे ज्ञान के परम दाता है। अब आत्मा के साथ परमात्मा का संबंध है, वो हमारे पिता है, वो हम कैसे साबित करें। आजकल डीएनए से साबित होता है कौन किसका बच्चा है, तो डीएनए में बहुत सारी चीजें होती है जो मैच होती है, तो हम आत्मा के पिता परमात्मा है तो हम भी डीएनए मैच करके देखते हैं क्या समानता है मुझ आत्मा में और परमात्मा में। आत्मा भी निराकार है, आंखों से दिखाई नहीं देती, परमात्मा भी निराकार है, ज्योति रूप। इसी तरह आत्मा चैतन्य है, आत्मा कभी मरती नहीं, देह है वो जड़ है, शरीर बदलता है, परमात्मा भी चैतन्य है। आत्मा बिंदु है, इसलिए इतनी छोटे से मस्तक में यहां समाई हुई है, परमात्मा भी बिंदु है। आत्मा अविनाशी है, कभी मृत्यु को नहीं पाती है, केवल शरीर बदल जाता है, आत्मा दूसरे शरीर में चली जाती है, तो परमात्मा भी अविनाशी है। आत्मा स्वप्रकाशित ज्योति है, तो परमात्मा भी स्वप्रकाशित ज्योति है। तो आत्मा के पिता कौन हो सकते हैं फिर, कोई साकार मनुष्य, कोई देवी देवता, कोई धर्म स्थापक, कोई धर्म उपदेशक, कौन हो सकते हैं। जैसी मैं आत्मा वैसा मेरा पिता होगा ना, मनुष्य का पिता मनुष्य, तो आत्मा का पिता आत्मा के जैसा ही परम आत्मा। अब कुछ अंतर भी है, लेकिन अगर आत्मा और परमात्मा सभी बातों में समान है तब तो हम कहेंगे कि मैं ही भगवान हूं। कई लोगों ने यह भी कह दिया शिवो हम, मैं ही ईश्वर हूं, लेकिन अंतर भी है। आत्माएं अनेक है और परमात्मा एक है। फिर आत्मा गर्भ से जन्म लेती है, तो कुछ महीनों तक उनको गर्भ के अंदर रहना भी पड़ता है, वो जेल की सजा की अनुसार होता है, लेकिन परमात्मा अवतरित होते हैं, वे किसी मां के गर्भ से जन्म नहीं लेते। आपको पता होगा कि मंदिर में भी जब शिव का मंदिर बनता है और उनकी जो प्राण प्रतिष्ठा होती है, तो अन्य देवी देवताओं के मंदिर और शिव के मंदिर में अंतर होता है। अन्य जो मंदिर बनते हैं तो पूरा मंदिर बन जाता है, फिर मूर्ति को प्रवेश करके उनको बिठाया जाता है, ठीक है। लेकिन जब शिव का मंदिर बनता है तो ऊपर की छत नहीं बनाई जाती है, केवल आसपास का एरिया बनाया जाता है। और जब शिवलिंग की प्रतिष्ठा होती है तो शिवलिंग को ऊपर से उतारा जाता है, द्वार से कभी प्रवेश नहीं कराया जाता है। किसी को ध्यान है? यस। आप पूछना, आपका डायरेक्ट संबंध नहीं बना होगा इस बात में, तो आज भी सनातन धर्म में इतना डिफरेंस है, क्योंकि परमात्मा गर्भ से जन्म नहीं लेते, वो जब भी आते हैं अवतरित होते हैं, ये अंतर है। इसी तरह से हम देह को धारण करते हैं, परमात्मा देह से न्यारे रहते हैं। हम आत्माएं भोगता है और परमात्मा अभोगता है। हम कर्म करते हैं तो कर्म का फल सुख या दुख हमें भुगतना होता है। परमात्मा सुख दुख से परे हैं, अभोक्ता है, उनको न कुछ खाना है, न कुछ भोगना है, न कुछ इच्छा है। इसी तरह परमात्मा जन्म मरण के चक्र में आती है और परमात्मा जन्म मरण के चक्र से न्यारे हैं। तो आज इस अंतर को भी जान लिया। अब परमपिता परमात्मा को कैसे संसार के सभी धर्म भी और सभी प्रकार की मान्यताएं एक जगह पर जाकर मिलती है, वो भी आप इस चित्र में देखेंगे। भारत के अंदर बहुत सारे शिव मंदिर है। अमूमन हर गांव में कोई भी देवी देवता का मंदिर शायद हो ना हो, लेकिन शिवालय जरूर छोटा बड़ा प्राचीन होता ही है। तो परमात्मा शिव कहीं पशुपतिनाथ के रूप में, कहीं अमरनाथ के रूप में, कहीं सोमनाथ के रूप में, रामेश्वरम में रामेश्वर के रूप में विराजमान है। नाम अलग अलग कर्तव्य के अनुसार हम देते हैं। इसी तरह गौतम बुद्ध ने भी माना, श्री कृष्ण ने स्वयं गोपेश्वर में श्री राम शिव जी की पूजा की, शिवलिंग स्थापन किया। श्री राम ने भी रामेश्वरम में स्वयं शिव जी को स्थापित किया। शंकर जी, आपको लगेगा शंकर जी तो शिव ही है, शंकर जी भी शिव से अलग है। शिव अर्थात ज्योति बिंदु। शंकर जी स्वयं एक तपस्वी है और उन्होंने भी शिव का ध्यान किया। ये एक नई बात शायद आपके लिए होंगी, जो ब्रह्मकुमारी की शिक्षाओं को आप अच्छी तरह से जाकर के और भी सेंटर्स पर सीखेंगे तो आप और भी समझ पाएंगे कि शंकर जी भी शरीरधारी है, वो शिव नहीं है, शिव का वो ध्यान लगाते, इसलिए उनके आगे भी शिवलिंग दिखाया जाता है। तो शिव निराकार है। इस्लाम में जिनको आज भी लोग हज करने जाते हैं मक्का मदीना, और वहां पर जो संगे अस्वद का पत्थर है जहां पर परिक्रमा की जाती है, वहां भी ज्योति का ही निशान है और उन्हीं की ही इबादत की जाती है। वो भी कुछ और नहीं है लेकिन निराकार परमात्मा का ही प्रतीक है। तो सभी की मान्यताएं एक जगह पर मिल रही है। वही प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के द्वारा परमात्मा ने स्वयं आकर अपनी पहचान दी है कि बच्चे अब मुझे पहचान लो कि मैं कौन हूं और मेरे साथ अपनी बुद्धि का योग लगाओ। तो चलिए कुछ देर, समय तो पूरा हो रहा है, लेकिन हम सभी उस एक पर निश्चय बुद्धि होकर और अपने मन को एकाग्र करेंगे, मेमोराइज करेंगे उन चीजों को, और फिर उस परम ज्योति से अपना कनेक्शन जोड़ेंगे। हमने जो भी परमात्मा का नाम रूप गुण और विशेषताएं जानी है उनको अपने अंदर स्मृति में लाते हुए कुछ देर मेडिटेशन करेंगे। रीढ़ की हड्डी सीधी हो, दोनों पैर जमीन से जड़े हुए हो, हाथ में जो कुछ भी रखा हो, आसपास बहुत सी चेयर खाली है उस पे रख दीजिए। दोनों हाथ या तो इस तरह से कनेक्टेड हो या एक हाथ दाया हाथ ऊपर हो, और अपनी गोद में रखें। ध्यान में हम जब भी बैठे, राजयोग में हम आंखें खुली रखते हैं, परमात्मा के दिव्य स्वरूप को सामने देखते रहें और कुछ चिंतन के माध्यम से चलेंगे। अपने आप से हम स्वयं बात कर रहे हैं, मुंह से नहीं बोलना है परंतु महसूस करना है। ओम शांति। मैं मस्तक में विराजमान चैतन्य सत्ता आत्मा हूं, देह से अलग ज्योति बिंदु स्वरूप। मैंने इस धरा पर अनेकों जन्म लिए और लगातार अपनी शक्तियों को खर्च करते, अब मुझे आवश्यकता लग रही है कि मैं आत्मा पुनः अपनी शक्तियों को जागृत करूं, अपने आप को चार्ज करूं। तो मैं चलती हूं उस एक परम पिता परमेश्वर के पास, इस साकार दुनिया से ऊपर, अपने ध्यान को आसमान से भी परे, बादलों को चीरते हुए, उस परमात्मा के पास ले चलें। आज मैंने पहचाना है कि सर्व शक्तियों का स्रोत परम पिता परमात्मा शिव ही है। मैं आत्मा उसी शिव पिता की संतान हूं। परम धाम में जो मेरा भी असली निवास स्थान है, प्यारे पिता परमात्मा विराजमान है। मैं आत्मा उस लाल प्रकाशमय परम धाम में हूं। मेरे सामने दिव्य आभा से आलोकित प्रभु पिता ज्योति स्वरूप में विराजमान है। ओ परमपिता परमात्मा, मैं आत्मा आपको ही ढूंढ रहा था। आज मैंने आपके सत्य परिचय को प्राप्त किया है। आप शांति के सागर हैं, दिव्य ज्योति बिंदु स्वरूप, गुणों के सिंधु है, सर्वशक्तिमान है, पतित पावन है, कल्याणकारी है। परमात्मा से शक्तियों की किरणें, पवित्रता की किरणें निकलती हुई महसूस करें, मैं आत्मा परमात्मा के सानिध्य में इन किरणों को प्राप्त कर रही हूं। ज्योति बिंदु आत्मा, ज्योति बिंदु परमात्मा से कनेक्ट है। ओ शिव बाबा, मैं आपकी संतान, आप ही की तरह शक्ति और शांति से भरपूर हो रही हूं। मुझे सदा ही आपके सानिध्य में रहना है, आपके समान गुणवान बनना है। आप ही मेरे मार्गदर्शक हैं। मैं वायदा करती हूं अपने जीवन में आपके समस्त गुणों को धारण कर शक्तिशाली, सफलता संपन्न अवश्य बनूंगा। परमात्मा की शक्तियां अपने अंतःकरण में भर लें और धीरे धीरे वापस अपने को मस्तक के बीच प्रकृति में अनुभव करें और इस अनुभव को प्रतिदिन प्रैक्टिस में लाके परमात्मा से जुड़े रहेंगे। इस बातचीत को, कम्युनिकेशन को जीवन भर करते रहेंगे। ओम शांति।